آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ आज के मुख्य समाचार में ऑस्ट्रेलिया कुछ नाउरू शरणार्थियों के लिए न्यूजीलैंड से पुनर्वास प्रस्ताव पर सहमत, औषध कंपनी मॉडर्ना मेलबर्न में करेगी एक mRNA वैक्सीन विनिर्माण केंद्र स्थापित, और खेल में एश बार्टी का कहना है कि उनके परिवार ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने के उनके फैसले का किया समर्थन। आज के बुलेटिन में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार नोरू से आए शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए न्यूजीलैंड के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया के ऑफशोर डिटेंशन कैंप्स में पहले से मौजूद 450 शरणार्थियों को न्यूजीलैंड में फिर से बसाया जाएगा। 3 साल की अवधि में हर साल लगभग 150 लोगों को वहां भेजा जाएगा। फेडरल सरकार का कहना है कि यह समझौता उनकी कट्टर सीमा नीतियों को कमजोर नहीं करता है। गृह मामलों की मंत्री कैरन एंड्रूस ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार का अप्रवासन रुख नहीं बदला है और नाव से यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सौदा केवल उन शरणार्थियों पर लागू होगा जो पहले से ही हिरासत में हैं। न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन मिनिस्टर क्रिस फाफॉ का कहना है कि उन्हें खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ समझौते की बातचीत की।
To see if the 150 offer that was made back in 2013 actually was still open. It obviously was. And we've been working since then to get the I's dotted and the T's crossed to get to the point today where we can announce this. I think it's a good thing in terms of our commitment to the regional humanitarian effort.
उधर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस समझौते का स्वागत किया है। UNHCR के क्षेत्रीय प्रतिनिधि एड्रियन एडवर्ड्स का कहना है कि नाउरू में कई शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए स्थिति में लंबे समय तक अनिश्चितता थी, जिस वजह से उन पर एक भारी टोल हुआ है। उनका कहना है कि यूनाइटेड नेशंस पुनर्वास प्रक्रिया में उनका समर्थन करने के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि इससे दूसरों के लिए और भी अधिक समाधान निकलेंगे।
With 112 refugees and asylum seekers today on Nauru and some 1,100 others in Australia, the arrangement will not be sufficient to cover the needs of all. We nonetheless hope it will bring about new impetus towards this goal so that compassionate and lasting answers can be found, including in Australia, for all who have been subject to Australia's offshore processing policies.
लेबर पार्टी का कहना है कि अगले सप्ताह के बजट से पहले उनके सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आने वाले फेडरल चुनाव की तैयारी में सभी पार्टीज जुट गई हैं। मौजूदा सदस्य जूली अवेंस के इस्तीफे के बाद पश्चिमी सिडनी में पैरामेटा की सीट को लेकर काफी अनुमान लगाए जा रहे हैं। खबर है कि एक तथाकथित सेलिब्रिटी उम्मीदवार को सीट पर पैराशूट किया जा सकता है। लेबर के नेता एंथनी अल्बनीसी का कहना है कि पैरामेटा और अन्य सभी उपलब्ध सीटों के बारे में जल्द खुलासा किया जाएगा।
I don't want to preempt that process. Nominations are being called for. There are a range of people who might put themselves forward at that time. There's been a range of people discussed over a period of time. I've had discussions with Julie Owens, as is appropriate, who's the outgoing member. I think it's a pity. Quite frankly, my first response was to try and talk Julie Owens into renominating for the seat.
एक कोरोनर ने फैसला सुनाया है कि पिछले साल क्रिसमस से पहले न्यू साउथ वेल्स के तटीय शहर न्यूकासल में मरने वाले 2 महीने के बच्चे की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई थी। न्यू साउथ वेल्स का कहना है कि मामला पहली बार जनवरी में दर्ज किया गया था और फिर राज्य के कोरोनर को भेजा गया था, जिसने मौत के कारण के बारे में निर्णय लिया है। ओमिक्रॉन संस्करण से संक्रमित होने के बाद दिसंबर में जॉन हंटर अस्पताल में बच्चे की मृत्यु हो गई थी। कोविड-19 से मरने वाले बच्चों में सिडनी में रहने वाला एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। विक्टोरिया में कोविड 19 से पीड़ित 11 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि राज्य में वायरस के 10,259 नए मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल राज्य के अस्पतालों में कोविड 19 से पीड़ित 244 लोग हैं। उधर न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस से पीड़ित 8 और लोगों की जाने गई हैं। राज्य में संक्रमण के 24,803 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1,180 लोग कोविड 19 से पीड़ित हैं और ताजमानिया ने 2,009 नए कोविड मामलों को दर्ज किया है। औषध कंपनी मॉडर्ना ने यह पुष्टि दी है कि वे मेलबर्न में एक क्षेत्रीय मुख्यालय और mRNA वैक्सीन विनिर्माण केंद्र स्थापित करेंगे। दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी और विक्टोरियन और फेडरल सरकारों के बीच पिछले दिसंबर में घोषित बहुअरब डॉलर के सौदे के बारे में अधिक जानकारी की घोषणा की गई है। ये सुविधा mRNA टीकों का उत्पादन करने वाली दक्षिणी गोलार्ध में पहली होगी। यहाँ कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों के लिए हर साल 100 मिलियन खुराक बनाने की उम्मीद है। मॉडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल अजरैक को उम्मीद है कि सुविधा शुरू होने के बाद लगभग 150 कुशल नौकरियां उत्पन्न होंगी।
And a high-tech industry. This is the first, Australia is the first country in the world to reach an agreement with Moderna for onshore manufacturing.
रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट ने फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको पुरस्कृत करते हुए $2 का एक नया सिक्का जारी किया है। इस रंगीन सिक्के में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स के साथ साथ शिक्षकों, क्लीनर, रिटेल श्रमिकों और संपर्क अनुरेखकों सहित अन्य श्रमिक शामिल हैं। अगले कुछ हफ्तों में 20 लाख सिक्के प्रचलन में जारी किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की संपत्ति परिषद के नए शोध से पता चला है कि लगभग 70% मतदाताओं को डर है कि देश में युवा लोग कभी घर नहीं खरीद पाएंगे। फेडरल चुनावों से पहले प्रॉपर्टी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने हमारा सपना अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य संपत्ति की तलाश करने वाले खरीदारों की दुर्दशा को उजागर करना है। और बढ़ती चिंता ये है कि ऑस्ट्रेलिया में सपनों का घर खरीदने की क्षमता कम होती जा रही है। संपत्ति परिषद के मुख्य कार्यकारी केन मॉरिसन का कहना है कि डेटा के मुताबिक स्थिति खराब है और इस समस्या को हल करने की आवश्यकता है।
The reason for launching this data today is to put a spotlight on this issue, to say that here's an issue that does need to be resolved. It needs all levels of government to be involved in those solutions, and we want to see the federal government and the federal opposition come up with plans which are going to address these issues.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 24 घंटों में कुल 1,778 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 23,088 हो गई। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी दर 98.74% दर्ज की गई है और कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार कम होते मामलों के मद्देनज़र केंद्र ने 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है, लेकिन मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 75 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 57.36 रुपये हो गई है। और अब खेल के मुख्य समाचार। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला विश्व कप में बांग्लादेश को 110 रनों से शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 रन पर 229 रन बनाए और उनके जवाब में बांग्लादेश की टीम 40.3 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उधर टेनिस ऑस्ट्रेलिया के बॉस का कहना है कि महिलाओं की विश्व नंबर 1 एश बार्टी के चौंका देने वाले इस्तीफे के पीछे कोविड 19 महामारी के कारण उपस्थित समस्याएं भी शामिल हैं। 25 साल की अशबाटी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के 2 महीने बाद और विंबलडन का दावा करने के अपने बचपन के सपने को पूरा करने के 8 महीने बाद घोषणा की है कि वह अब टेनिस से दूर हो जाएंगी। टेनिस ऑस्ट्रेलिया चीफ एग्जीक्यूटिव क्रेग टिली ने मेलबर्न रेडियो स्टेशन 3AW को बताया है कि जब उन्होंने खबर सुनी तब वे मायामी में बाटी के कई साथियों के साथ थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी समैथा स्टोसर भी शामिल थी।
But there's a great deal of respect for Ash and appreciation for some of the tough decisions she's made. And I certainly think COVID had an impact. The last 2 years as a tennis player has been extremely difficult to go from city to city each week of the year. And she was gone 7 months last year. And I would have think that would have taken a bit of a toll as well.
उधर ऐश बाटी का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के कुछ ही महीनों बाद और 3 ग्रैंड स्लैम और विश्व की नंबर 1 रैंकिंग के बाद टेनिस के खेल से दूर होने के उनके निर्णय का उनका परिवार पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। गुरुवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने टेनिस संन्यास लेने के फैसले के बारे में मीडिया को बताते हुए मिस बाटी ने कहा कि विंबलडन खेलने के बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया और उन्हें पता चला कि उनके पास टेनिस को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। 25 वर्षीय बाटी का कहना है कि वह आगे जो भी लिखा है उसके लिए तैयार है और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की उम्मीद कर रही हैं।
I've always wanted to have the time to contribute more in other ways and I think now I've got that opportunity and I've been fortunate enough to have so many opportunities given to me from tennis and now I'm ready to really give back in ways that I'm passionate about and visiting Uluru and being up in the community was just incredible. That's what lights me up inside.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। वहाँ का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 35 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में भी ज़्यादातर धूप रहेगी और न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में आंशिक बादल रहेंगे और यहाँ का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 21 डिग्री तक जाएगा। कैनबरा में बरसात की संभावना, वहाँ का न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री। सिडनी में भी बरसात की आशंका, वहाँ का न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 23 डिग्री। ब्रिस्बेन में 1 या 2 बौछार पड़ने की संभावना, वहाँ का न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 29 डिग्री। डार्विन में बारिश के साथ तूफान की आशंका, वहाँ का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 33 डिग्री तक जाएगा। और वहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौसम काफी गर्म रहेगा और धुंध भरी धूप रहेगी, वहाँ का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 35 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।